नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। घड़ी में समय हुआ है 8:30 बजे का। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से, टेनिस से। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव को। मलय नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्कार और श्रोताओं का अभिवादन।
अमले, वैसे तो मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, और इंग्लैंड की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी लग नहीं रही, लेकिन अगर हम खो खो का पूछें, क्योंकि आज मनसुख मांडविया मिले हैं टीम से और हमने भी एक स्पेशल इंटरव्यू किया है जो हम आज के स्पोर्ट्स कैन में बजाएंगे, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, इतिहास रचा और आगे की जो सफर ये लोग एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए बना रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा।
देखिए, लगभग 50 विश्व की टीमें ऐसी हैं जो अब खो खो खेलने लगी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1936 के ओलंपिक में इसको शामिल किया जाएगा और भारत मजबूत दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करेगा।
परचम हम लहराएंगे और इसी के साथ शुरू करते हैं पहले सुर्खियां। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जारी। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन से भारत की पीवी सिंधु हार कर बाहर। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में श्राची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसी पाइपर्स को 2-0 से हराया। पुरुष वर्ग में सूरमा हॉकी क्लब का सामना चल रहा है दिल्ली एसी पाइपर्स से। खेलो इंडिया की शुरुआत कल से लद्दाख में होगी विंटर गेम्स 2025 के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेला जा रहा है कोलकाता के ईडन गार्डन में। मलय, और भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने को कहा इंग्लैंड से। जैसा अभी हम कह रहे थे, इंग्लैंड की स्थिति कोई बहुत क्या अच्छी है ही नहीं, क्योंकि 19वां ओवर चल रहा है, 8 विकेट लौट चुके हैं, 121 रन है, और थैंक्स टू बटलर जिसने 68 रन बनाए, वरना तो हालत और पतली होती है।
बिल्कुल, एकमात्र जो खिलाड़ी चल पाया वो है जॉस बटलर, जिसने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। और कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के लिए एक मौका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी बैटिंग को और अपने बैटर्स को आजमाने का दुनिया के बीच, और ये दिखाने का कि हमारी टीम भी मादा रखती है जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट का सवाल है, उसमें बेहतर करने का। लेकिन अभी तक किसके नासार नजर नहीं आए लवलीन जी,
और जरूरी है भारत के लिए भी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हार के आया है, कि कम से कम हम जीते, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो ये भी एक नई टीम मानी जाए।
बिल्कुल बिल्कुल नई टीम है, और पूरी उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है कि टीम पूरी तरह कोशिश करेगी, क्योंकि ये गौतम गंभीर के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, कोच के लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया की उस करारी हार के बाद ये दिखाएं कि हमारी टीम में एक लंबी कतार है नए खिलाड़ियों की, उदीयमान सितारों।
बात करते हैं आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप की, क्वालालंपुर में जो चल रहा है। कल श्रीलंका के साथ हम खेलेंगे, 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा। और इससे पहले इस पे चर्चा करें, हमने जो अपने दो मुकाबले, मालूम है हमने भी जीते हैं, सभी को मालूम है श्रीलंका ने भी जीते हैं। कल जो इंडोनेशिया के साथ मैच हुआ था जिसमें 10 विकेट से हमारी जीत हुई थी, गेंदबाज वैष्णवी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया था, 5 विकेट लिए थे, अपनी इस उपलब्धि में उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं।
आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरा डेब्यू भी था और मैंने हैट्रिक भी ली 5 विकेट्स। जब मैं रनों पे वापस जा रही थी तब मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं अपने चेहरे पे ना दिखाऊं कि मेरा हैट्रिक हो जाए, और जब बैटर आया था तभी मैंने उसका स्टांस देखा तो वो लगा था अटैक करो स्टंप पे जाएगी। ग्राउंड पर तो सेलिब्रेट करा बहुत ज्यादा, और बाकी अभी मम्मी पापा से वीडियो कॉल करना रह गया है।
वैष्णवी शर्मा बहुत खुश और बहुत भावुक 5 विकेट लेने के बाद। बहरहाल जो कल मैच शुरू होगा मले, उसकी बात करें, श्रीलंका भारत एक अच्छा मैच, क्योंकि दोनों ही अपने शुरुआती मैच जीत चुकी हैं।
बिल्कुल, दोनों ने अपने अपने ग्रुप ए में दो दो मैच जीते हैं, और जहां तक भारत का सवाल है, जो आप बिल्कुल सही कह रही थी, वैष्णवी शर्मा और आयुषी शुक्ला ने ये कर दिखाया है, और दो मिलकर ही मैच जिता सकते हैं, ये भी बात सिद्ध कर दी है।
रैकेट की दुनिया की ओर चलें तो जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु हार गई हैं वियतनाम के चियल गुएन से 22-21, 12 का स्कोर था। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन अब से कुछ देर बाद शायद खेलेंगे ताकुमा ओबेयाशी से, मैच ही थोड़ा देर होती जा रही है, उस कोर्ट में शायद कोई मैच हो रहा होगा, लेकिन प्रियांशु राजावत, किरण जॉर्ज अपने अपने मुकाबले हार गए हैं। तो सिंगल्स में लक्ष्य सेन हैं जो एक अलख जगाए हुए हैं, जिनसे कुछ उम्मीद है। बाकी पीवी सिंधु अब जो एक आशा के अनुरूप है वो नहीं उनका स्पार्क दिख रहा है।
आशाओं का एकमात्र दीपक जो टिमटिमा रहा है वो लक्ष्य सेन के रूप में। और जहां तक पीवी सिंधु की बात है, बहुत पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि अपनी पुरानी बातों को, इंजरीज को, जो उनके घुटने टखने में चोट थी उसको भूल कर वापिस लौटे मैदान पर और आने वाली श्रृंखलाओं के लिए तैयारी करें। लेकिन अभी तक उनमें वो क्लास, वो फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है जो देखने को चाहती है, जो देखना चाहती है भारत की जनता।
लक्ष्य से उम्मीद करते हैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और इस टूर्नामेंट में भी आगे बढ़ें। बहरहाल 11 से 16 फरवरी तक चीन के किंगडाओ में होगी बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, जिसका नेतृत्व यही दोनों खिलाड़ी करेंगे, यानी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। देवेंद्र की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने टीम का चयन करते समय खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग और मौजूदा फॉर्म को महत्व दिया है। टीम में HS प्रणय और मालविका बंसोड शामिल होंगे। भारत के पास डबल्स में भी एक मजबूत टीम है, जिसमें पूर्व विश्व नंबर एक सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगुवाई करेगी, जबकि महिला डबल्स की जिम्मेदारी गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली या ओलंपियन अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की युवा जोड़ी संभालेगी। टूर्नामेंट दो चरणों में खेला जाएगा। पहला चरण क्वालिफाइंग दौर होगा, जहां राउंड रॉबिन होगा और इसके बाद नॉकआउट चरण होगा। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें नॉकआउट चरण में आगे बढ़ेंगी। नॉकआउट चरण का ड्रॉ ग्रुप चरण के अंतिम मैच के पूरा होने के बाद या अंतिम मुकाबले के निर्णायक रूप से तय होने के बाद निकाला जाएगा। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
तो मले देखा जाए, भारत ने 2023 में दुबई में आईजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। कोशिश करेंगे कि रंग बदले इस पदक का, लेकिन मुश्किल थोड़ा होगा।
बहुत कोशिश करनी होगी, बहुत प्रयत्न करना होगा, बहुत प्रयास करना होगा।
और अब बात करते हैं खो खो के। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पुरुष और महिला खो खो टीम को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। उन्होंने भारत के पारंपरिक खेल को विश्व स्तर पर गौरव दिलाने के लिए दोनों टीमों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पुरुष और महिला खो खो टीमों को पूरी टीम के साथ कोच, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज जो दोनों टीमें फाइनल जीती थी, महिला और पुरुष टीम कोच, ये सभी आज आकाशवाणी में भी आए थे। इन्होंने अपने अनुभव बांटे, इन्होंने अपने आगे की रणनीति बताई। इन्हीं सब पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह ने उनसे खास बातचीत की। वो इंटरव्यू सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारा सौभाग्य है कि आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ खो खो विश्व विजेता टीम हमारे साथ है, उनके कोचेस हमारे साथ हैं। और एक बड़ी कामयाबी देश की थी जब हम विश्व चैंपियन खो खो में बने थे। और सबसे पहले तो हम पूरी टीम का, हमारे दोनों कैप्टन्स का, महिला और पुरुष टीम का, साथ में हमारे पुरुष और महिला टीम के कोचेस का आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
धन्यवाद।
धन्यवाद।
तो हमारे साथ हैं चीफ कोच अश्विनी कुमार जी, जो कि पुरुष टीम के हैं, साथ में महिला टीम के चीफ कोच सुमित भाटिया जी हैं, महिला टीम कैप्टन प्रियंका इंगले जी हैं और पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वायकर जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा अपने कोचेस से। अश्विनी जी, ये बताएं कि जब इतनी बड़ी सफलता, जब इनफैक्ट जब इसकी बुनियाद हुई थी, तब से हमने इसको फॉलो करना आकाशवाणी ने शुरू किया और इस स्तर तक जाएगा कि पूरा देश इससे कनेक्ट होगा और इसके बाद आप विश्व चैंपियन बन जाते हैं, पूरी यात्रा कैसी रही आपकी?
यात्रा बिल्कुल अविस्मरणीय जिसे कह सकते हैं
जी,
कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो हो के दिख रही है। जब पहले एक महीना पहले जब वो कैंप शुरू हुआ
जी,
पूरे देश से 60 खिलाड़ी अपने अपने राज्य के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनका नेशनल की परफॉर्मेंस के आधार पर जब चुना गया तो उनको बुलाया। और एक महीने पहले जो कैंप लगा, आपने भी देखा कि उनकी फिटनेस के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर और उनके गेम के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काम किया गया। और लास्ट में वो टाइम आया, वो समय आया कि जब 60 नहीं, क्योंकि खो खो खेल में तो सिर्फ 15 ही खिलाड़ी खेलेंगे
जी,
तो उनके सिलेक्शन के टाइम पे जो वो बहुत कठिन समय था
जी, कोच के लिए एक बड़ा इम्तिहान था किन खिलाड़ियों को
जी
चुने, किसको ना चुने
जी, सिलेक्टर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, लेकिन फिर भी सभी ने मिलजुल के कितने बैलेंस टीम हम लोगों को दी कि उसके अंदर जो हमें चाहिए थे, डिफेंडर थे, अटैकर थे, और खासकर इस गेम का जो नया कंसेप्ट, जो एक नया चीज आया है वजीर का, और वजीर का मैं बता दूं कि हमारे जो कैप्टन है
जी
प्रतीक वायकर, वजीर की भूमिका इन्होंने निभाई और बड़ी बखूबी निभाई आपने।
जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मट टू मैट, तो कहां वो गांवों से चल के एक अभाव में रहना और उसके बाद जब आप एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आते हो दिल्ली देश की राजधानी में जहां पे आपको हर सुविधाएं मिलती हैं, तो किस तरीके से आपने ढूंढा हमारे खिलाड़ियों को और उनका कैसे कोच किया उनको?
हमारे पास जब कैंप में 60 खिलाड़ी आए थे तो जो खिलाड़ी आए वो सब गरीब परिवारों से भी है, मध्यम वर्ग भी है और कुछ अच्छे परिवारों से भी आए हैं
जी।
तो लेकिन वो खिलाड़ी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के 60 खिलाड़ी हमारे पास थे और कुछ खिलाड़ी तो ऐसे थे जिनके पास मैट शूज भी नहीं थे। मट टू मैट की थ्योरी में हम ये कहेंगे कुछ खिलाड़ी थे वो खेलते तो हैं
जी,
वो किसी और के शूज पहन के खेल रहे हैं। कश्मीर से नाजिया है उस पे भी ऐसा अभाव था शूज का, ट्रैक सूट भी नहीं थे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधान जो है सुधांशु मित्तल जी और श्री एम एस त्यागी जी, उन्होंने सबसे पहले इन खिलाड़ियों का ध्यान रखा, सबको वहां पर आते ही किट प्रोवाइड करी, क्योंकि किट हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी देती है, सारी चीजों का व्यवस्था सबका ध्यान वो रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आते ही उन्होंने किट दी, क्योंकि यहाँ पर वेदर थोड़ा चेंज था, साउथ से भी खिलाड़ी आए, उन्हें ट्रैक सूट प्रोवाइड किए गए, प्लेइंग किट दी गई और सबसे मेन है जो इनका अस्त्र है मैट शूज, वो इनको दिए गए अपनी तरफ से और उस मैट शूज से ही ये खिलाड़ी खेलना स्टार्ट हुए और खेल में इतना आगे बढ़ गए कि भारत देश को गोल्ड मेडल दिला दिया।
फाइनल की बात करें तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका के साथ आपका मैच हुआ, क्या कुछ मतलब एक संघर्ष किस तरीके का था?
जब हमारा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के साथ होना था हमें पता था, तो पिछले दिन रात को ही सर ने हमें, हमारी मीटिंग चल रही थी प्लेयर्स और कोचेस की, तभी सर ने बताया था कि अगली भी टीम जो हमारे अगेंस्ट खेलने वाली है वो भी टीम अच्छी है, उनके साथ कैजुअल नहीं लेना है, अच्छे से खेलना है। फिर हमने इस मैच में चेजिंग भी हमारा बहुत अच्छा रहा और डिफेंस। और बात की जाए फाइनल की, तो फाइनल की टीम हमारी नेपाल के साथ होने वाले था फाइनल मैच, तो नेपाल के साथ हम पहले भी खेल चुके हैं फोर्थ एशियन चैंपियनशिप में, तब भी हमारा मैच नेपाल के साथ ही हुआ था, तो हमें पता था कि वो लड़कियां मतलब किस तरह से खेलती है। लेकिन पहले इनिंग में थोड़ा मैच क्लोज रहा, फिर हमने उनकी स्ट्रेटेजी जान ली, फिर हमने थर्ड टर्न में जो हमने चेजिंग की है तो बहुत अच्छी चेजिंग हुई है उस। और फोर्थ इनिंग की बात की जाए तो उसमें डिफेंस को जो सर ने बचा के एक बैच रखा था, ड्रीम रन लेके आएंगे सर ने कहा था, तो वो बैच भी बहुत अच्छे से खेला और इस तरह हम मैच जीते।
और श्रोता हम आपको ये भी बता दें कि ये पूरा साक्षात्कार जो है कल कंट्री वाइड प्रोग्राम में रात 9:30 प्रकाशित प्रसारित किया जाएगा, जिसमें इन खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी, इनकी मेहनत, कितनी मेहनत की, कहां से उठी और यहां तक पहुंची, वो सब आप सुन सकेंगे। तो जरूर सुनिएगा कल कंट्री वाइड में 9:30 इस पूरे साक्षात्कार को। खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत कल से लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से होगी। हमारे लिए संवाददाता ने ये जानकारी भेजी है।
The Union Territory of Ladakh is all set to host the first leg of the 5th edition of Khelo India Winter Games, scheduled from January 23rd to 27th this year. This marks the second time since the Games' inception in 2020 that Ladakh will play host to the event. The stage is set and all the arrangements and preparations have been done by the UT administration of Ladakh. Ice hockey games remain the center of attraction of Ladakh's winter sports. Athletes will compete in ice events, showcasing their skills and waving for glory against the backdrop of Ladakh's frozen beauty. In the Ladakh leg of the competition, two sports, ice hockey and speed skating, will be held in the ND Stadium, Gupak Lad and Ladakh Scouts Regimental Center Rink. For Akashwani, this is Khurshid Yusuf from Leh Ladakh.
रांची में हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में रांची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-0 से हरा दिया। दूसरे तीसरे क्वार्टर में उसने गोल किए। पुरुष वर्ग की अगर बात करें वहां सूरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से हो रहा है। जीएसडब्ल्यू सूरमा 2-0 से आगे है। तालिका में जीएसडब्ल्यू छठे और दिल्ली एसजी की टीम 8वें नंबर पर है। मले जल्दी से बात करते हैं वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, जहां महिला सिंगल्स में ईगा स्वातेक और मेडिसन की सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुरुष वर्ग में जानिक सिनर और बेन शेल्टन ने भी सेमीफाइनल में जगह बना लिया। बेन शेल्टन ने जबरदस्त मैच खेला,
बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके खेल का रहा यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि टेनिस की दुनिया में हर रोज कोई ना कोई नया नाम उभर कर आ रहा है, लेकिन पुराना नाम अभी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी जोकोविच का खेल सबके लिए उत्साह भरा हुआ ऐसा खेल एक नई पौध के लिए, नई पीढ़ी के लिए
उत्साहवर्धक है। वो देता है 133 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड ने भारत को। जल्दी से बताइए कितना आसान या मुश्किल।
देखिए भारत के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है, अर्शदीप और वरुण बहुत अच्छा अच्छी गेंदबाजी की है, तो अब भारत के बल्लेबाजों को ये सिद्ध करना है कि उनके लिए ये रन बहुत नहीं है।
तमाम खबरों पर आपसे चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मले। और दोस्तों हमारी तरफ से अब शिवरात्रि।